आज हम आप सबका आबू की इस पावन धरती पर, उस धरती पर जिस पर स्वयं भगवान अवतरित होते हैं, उस धारा पर आप सबका स्वागत करते हैं। गुजरात वासियों का आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के 700 करोड़ लोगों के अंदर से 10,000 में से कोई एक बाबा का बच्चा निकलता है, 10,000 में से कोई एक भगवान का लाल निकलता है। और इतने 700 करोड़ में से 125 करोड़ भारत की जनसंख्या, और भारत की जनसंख्या और आबू और उसके आसपास की जनसंख्या देखो तो मुश्किल से 5 लाख। इन इतने से लोगों में से आज हमारे पास बैठे हैं मुश्किल से 200-400-500 लोग, लेकिन आज हम आपके सामने उन जीवन की मर्यादाओं और नियमों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं, जिन ईश्वरीय मर्यादाओं और नियमों को पालन करके हम अपने जीवन में योगी से महायोगी और महायोगी से राजयोगी की तरफ अपने जीवन के कदमों को बढ़ा सकते हैं। आज की क्लास के एक एक स्लाइड्स आप देखेंगे इस पे है, एक एक स्लाइड्स को आप ध्यान से सुनना, एक एक बातचीत को आप ध्यान से सुनना। हर उस जीवन के नियम और हर उस मर्यादा का हम बात करने की कोशिश करेंगे आपसे। उन नियमों का यदि हमने अक्षर पालन किया, अपने जीवन में उतारा, तो मान के चलिए हमारा जीवन साधारण जीवन नहीं रहेगा। देवता सबने बनना है, लेकिन उस देवता में भी देवाधिदेव देवो जो महादेव स्वयं हमें बनाने आए हैं, उस देवाधिदेव महादेव की आशीर्वाद से कोई लक्ष्मी नारायण बनेगा और कोई प्रजा में भी आएगा, साधारण प्रजा। तो हम उस आज नियमों की बात करने आए हैं आपसे। नेक्स्ट प्लीज। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला हमारे आध्यात्मिक जीवन का, ब्राह्मण जीवन का, राजयोगी जीवन का हमारा पहला नियम क्या है, कहां से शुरू होती है हमारी दिनचर्या? सवेरे सवेरे अमृत वेला से। अमृत वेला यानी वो वेला जब स्वयं भगवान अपने बच्चों को अमृत पिलाने आता है, और उस अमृत को जो नहीं पी पाता, यानी यदि अमृत वेला में से ए हटा दें तो क्या होगा? अमृत वेला में से यदि ए शब्द हटा दें आगे तो कौन सी वेला रह जाएगी? तो जो सोए लोग रहते हैं उनके लिए ये अमृत वेला, और जो आप और हम में से जो राजयोगी जागे रहते हैं उन सबके लिए ये है अमृत वेला। इस अमृत वेला के अंदर एक बार जरा चेक करेंगे कुछ, इसको पूरा स्लाइड पूरा नहीं आ रहा है। हम बात कर रहे हैं आपसे अमृत वेला की। तो अमृत वेला में जो सबसे पहला नियम है, कितने बजे शुरू होता है अमृत वेला? 2 बजे से शुरू होता है। मुझे लग रहा है आज यहाँ रियली राजयोगियों की क्लास बैठी है, लेकिन फिर भी 2 बजे उठ पाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम आपसे बात करें, हमारा अमृत वेला जो बाबा ने नियम दिया है कितने बजे का है? 3:30 बजे हम लोग उठे, और 3:30 बजे उठने के बाद कितने बजे से ये कितने बजे योग चलेगा? 4 से 4:45। किसी भी राजयोगी की पहले जीवन की मर्यादा है, हम 4 से 4:45 का सवेरे सवेरे का अमृत वेला कभी भी मिस ना करें, कभी भी नेवर, वी शुड नेवर 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 मिस दिस अमृत वेला। अमृत वेला का सुबह का समय हम कभी भी मिस नहीं करेंगे। दूसरी बात, और क्या बात इंपॉर्टेंट है अमृत वेला सुबह से लेकर के? हम 3:30 बजे उठते ही पहला काम क्या? बाबा को प्यार से गुड मॉर्निंग किया, उसको आज के दिन के लिए धन्यवाद दिया। लोग कहते हैं कि हमारे पास भगवान उठते ही सवेरे सवेरे 86,400 रुपए आपके हाथ में रख देता है, और उस रुपए को आप पूरे दिन में जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल करें। तो 86,400 रुपए क्या है? ये इतने सेकंड है जो पूरे दिन में आज आपको मिलने वाले हैं। एक एक पल पल को यदि हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये जीवन का बेहतरीन क्षण होंगे। अच्छा, इसको उसमें शिफ्ट कर दीजिए, दूसरे पीसी पे हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम बात कर रहे थे कि हाँ, जैसे जब देख रहा हूं, आप इस पिक्चर में देख रहे हो दो दोस्त बात कर रहे हैं। कैसे बात करते हैं दो दोस्त? क्या मशगूल होके मस्ती से बात करते हैं, चाय पी रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। उनको कहा जाए कि आपको एक दूसरे से बात करने में, एक दूसरे से प्यार की बात करने में क्या मुश्किल होती है? होगी क्या मुश्किल? नहीं होती। तो बेसिकली हम लोगों को भी सिर्फ उस प्यारे परमात्मा से, अपने साथी से जो संबंध हम जोड़ना चाहें जोड़ें, और दिल की बात उससे कर लें। यही तो अमृत वेला है। यही तो केवल दिल की बात। अब हम आप अच्छा ये अभी पूरी स्लाइड आप देख पा रहे हैं, विजिबल है आप लोगों को, चलिए वेरी गुड। देखिए कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक देख रहे हो आप, एडजस्ट योर टाइम ऑफ स्लीपिंग, आप अपने सोने का टाइम खुद एडजस्ट करें। कई बार क्या होता है, रात को 11 बजे सोए, 11:30 सोए, 12 सोए, 12:30 सोए, तो फिर क्या करते हैं, सुबह के टाइम को एडजस्ट कर लेते, कोई बात नहीं, 4 नहीं, 4:30 नहीं, 5 नहीं, 5:30। हम रात का टाइम जितना ऊपर नीचा करना होता है कर लेते हैं, उसी हिसाब से फिर सुबह का भी कर देते हैं। लेकिन याद रखिए हमें दिन का टाइम भी तो सोने के लिए मिला है। तो हमें जैसे रात का टाइम सोने का भले ऊपर नीचे समस्याओं के हिसाब से, सेवाओं के हिसाब से, जो ईश्वरीय आज्ञा मिली है उस हिसाब से ऊपर नीचे कभी थोड़ा होता है, हो सकता है, लेकिन सवेरे के लिए यह आज्ञा नहीं है। सवेरे का टाइम यदि 3:30 है तो वो 3:30 है। कभी किसी कारण से कोई मिस हो जाए, दैट्स अ डिफरेंट केस। देखिए बीच में एक लगा, ओ आई मिस्ड। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी कारण से मिस कर गए तो फिर पूरा दिन मन में एक अंदर वाइब्रेशन क्या चला गया, अच्छा आज मेरा अमृत वेला नहीं हुआ ना, इसलिए मेरा ये काम भी खराब, ये काम भी खराब, ये काम भी खराब। ये संकल्प नहीं आने देना, हमें निश्चय तो अंदर मन में ये रखना है कि हमारा अमृत वेला किसी भी कारण से मिस ना हो जाए। लेकिन बाय द वे यदि मिस हो भी गया तो इसका इलाज आप कीजिए, दिन भर में 45 मिनट का एक्स्ट्रा योग दिन में कभी कीजिए। लेकिन दिन उस एक संकल्प के कारण दिन खराब नहीं कीजिए। अब कई लोग सोचते हैं, अच्छा हमें तो बाबा आना सुबह आके चारपाई खिला देगा और जगा देगा, इसलिए कोई अभी अलार्म भी नहीं लगाते। भले बाबा जगाएगा लेकिन मामा माया सुला भी तो देती है। आप कोशिश करके अपनी अलार्म जरूर लगाइए, जो भी आपका सोने का टाइम है। सुबह 3:30 बजे आपकी नींद यदि आप लगातार एक साल यदि कोई यदि अमृत वेला कर लेता है, उसको जीवन में फिर दोबारा कभी अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, शुरू शुरू में पड़ती है। नेक्स्ट प्लीज। अब देखिए रात को जब हम सो रहे हैं, इतनी डाइट इतना ठूस ठूस के खा लें, 11 बजे मान लो, 10 बजे, 10:30 बजे हमने इतना ज्यादा खा लिया, तो फिर क्या होगा, नींद खुलेगी सुबह नहीं खुलेगी। ओवरनाइट हम जबरदस्ती कर रहे हैं, कोई सेवा है, विशेष काम है तो ओवरनाइट किया, लेट नाइट किया, लेकिन उस लेट नाइट को अपने जीवन की आदतों में तब्दील ना होने दें। विशेष रूप से ध्यान रखें, यदि हमारे सोने का अपना नियम 10 बजे है, किसी कारण से 10:30 हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं डेली हमारा नियम रात को 12 बजे सोने का हो रहा है। यही तो राजयोगियों में और माया के साथियों में यही तो डिफरेंस है। वो काम कितने बजे करते हैं आपने अपने घर परिवारों में देखा होगा, क्या टाइमिंग स्टाइल है उनका, रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक सोते हैं। 3 बजे, 4 बजे तक सोना और सुबह 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे, 9:10 बजे उठना, क्या मतलब हुआ इसका, जो रात बनाई थी सोने के लिए वो बना दिया जागने के लिए, और जो दिन बनाया था काम करने के लिए उसको बना दिया सोने के लिए। उल्लू की लाइफ स्टाइल होगी, उल्लू रात को जागता है, दिन में बने थे हम राजयोगी बनने, चले थे राजयोगी बनने। आगे मैं बोलूंगा नहीं, नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट देखिए, जब राजयोगी हम बनना चाहते हैं तो अमृत वेला जरूरी है। किसी कारण से अमृत वेला यदि नहीं हो रहा है तो इन 2 स्वमान का आप विशेष अभ्यास कीजिए। कौन से 2 स्वमान, मैं प्रकृति जीत आत्मा हूं। क्योंकि किस कारण से 5 तत्वों का शरीर भी तो हमें खींच रहा है, सुबह सुबह सोने से उठने नहीं दे रहा है, तो हमें प्रकृति पर विजय प्राप्त करनी जरूरी है। मैं प्रकृति जीत आत्मा हूं, सवेरे उठते ही, रात को सोते वक्त, दिन में इस स्वमान का अभ्यास कीजिए। शरीर आपको खींचेगा नहीं, आपको साथ देने लगेगा। जब सुबह सुबह शरीर साथ देने लगेगा उठना ईजी हो जाएगा। दूसरा, मैं प्यार के सागर परम पिता परमेश्वर की संतान हूं। क्योंकि माया पे जीत कौन दिलाता है, या तो प्रकृति जीत बन के माया को जीत सकते हो, या उस प्यार के सागर की ताकत से मास्टर सर्वशक्तिमान बन के हम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। आपने सुना होगा 2 बजे उठे वो राजयोगी, 3 बजे उठे तो महायोगी, चार बजे उठे तो योगी, पांच बजे मंदिरों की घंटियां बजती हैं इसलिए कहते हैं भक्त, छह बजे गृहस्थी भोगी, आठ दस बच्चे होंगे रात तो को देर तक सोने नहीं देंगे, सोएंगे ग्यारह बारह बजे, एक बजे दो बजे, फिर क्या होगा, तो सुबह लेट ही जागेंगे। तो छह बजे भोगी, सात बजे, आठ बजे महारोगी, राजयोगी से महारोगी तक का सफर है ये। हम इस सफर में कहां पहुंचे, अपना अपना इवेल्यूएशन, अपना अपना कैलकुलेशन भले खुद करेंगे, लेकिन एक बात याद रखें, हम इसको ये मतलब नहीं है ये कहने का कि हम आपसे कह रहे हैं डेली आप राजयोगी बनकर के सुबह दो बजे उठ जाइए, क्योंकि जीवन एक तलवार की धार पर चलना है, बैलेंस बना करके चलना है। ऐसा नहीं कि दो बजे उठ रहे हैं और फिर दिन में तीन घंटे चार घंटे और सो लिए, बारह बजे लेकर चार बजे तक सो लिए, तो वो इम्बैलेंस नहीं करना है। हाँ, सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार आप राजयोगी का टेस्ट भी जरूर लेके देखिए, लेना जरूरी है। दो बजे भी उठिए, महीने में एक बार उठिए, पंद्रह दिन में एक बार उठिए, लेकिन साढ़े तीन बजे उठना जीवन की मर्यादा है, ब्राह्मण जीवन के लिए आवश्यक है, उसके लिए माफी नहीं है। आप राजयोगी नहीं बने कोई बात नहीं, लेकिन साढ़े तीन बजे हम सबको उठना है। नेक्स्ट प्लीज। उसके बाद अमृत वेला करने के बाद एक्सरसाइज को अपनी नियमित रूटीन में डालिए। एक बार पूछ सकते हैं कौन लोग हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, हाथ खड़ा करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। लगभग 15-20% लोग यहां लगा कि रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। देखने से हमें रेगुलर एक्सरसाइज बॉडी को फिट रखने के लिए कुछ न कुछ समय देना जरूरी है। मतलब कितनी एक्सरसाइज करें, कम से कम 15 मिनट, ज्यादा करनी हो ज्यादा से ज्यादा एक घंटा। यंग एज है, 20-22 साल के हैं, 15-20 साल के हैं, आप एक घंटा भी एक्सरसाइज करेंगे चलेगा। एज थोड़ी ज्यादा है तो भी आप 15-20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा योग एक्सरसाइज सबको करनी चाहिए। ये वो वक्त है जो हम अपने शरीर के लिए निकालते हैं। जब हम अपने शरीर के लिए वक्त निकालते हैं, ये शरीर हमारा साथ देर तक देता है, लेट तक देता है। बड़ी एज होगी तो फिर घुटनों में दर्द, इधर कमर में दर्द, पीठ में दर्द, इधर दर्द, ये चीजें हमें खींचेंगी नहीं। ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, ये बीमारियां आपको 50-60 साल तक तो टच भी नहीं करेंगी, जबकि दुनिया में ये बीमारियां 25 साल में शुरू हो जाती है, 30 साल में, 35 साल में शुरू हो जाती है। आप भी चाहते हो कि कम से कम 70-75 साल तक ये बीमारियां आपको टच भी ना करें कोई भी, तो जरूरी है कि 15 मिनट से 30 मिनट 35 मिनट, और क्या मुश्किल काम है, ब्रिस्क वॉक कर लीजिए, डायमंड हॉल के दो चक्कर ऐसे आपके घर के आसपास जो भी हो, 4-6 चक्कर लगा लीजिए, वहां पे मोहल्ले का चक्कर लगा लीजिए, और क्या कर सकते हैं, प्राणायाम कर लीजिए। आजकल जगह जगह पार्क बने हुए हैं, लोग प्राणायाम करते हैं। और किन्हीं का गेम्स में इंटरेस्ट है तो भाग दौड़ वाले आउटडोर गेम्स खेले। आउटडोर गेम में बैडमिंटन हुआ, एक इंडोर गेम वाले तो फिर इसमें तो क्या हो जाता है कि कमरे के अंदर बैठ करके थोड़ा गार्डन में, पार्क में, बाहर रह करके जो एक गेम खेल सकते हो हल्का फुल्का, वो गेम्स खेल लें। नेक्स्ट प्लीज। स्पिरिचुअल स्टडी। स्पिरिचुअल स्टडी क्या है? आध्यात्मिक अध्ययन। क्या करते हैं हम आध्यात्मिक अध्ययन में? मुरली। मुरली सुनना ब्राह्मण जीवन की दूसरी महत्वपूर्ण मर्यादा है। पहली कौन सी थी? अमृत वेला। और दूसरी महत्वपूर्ण मर्यादा ब्राह्मण जीवन की है मुरली। मुरली के लिए कहा गया है कि मुरली ब्राह्मण जीवन का श्वास है। जब तक सांस है तब तक, कहावत है ना, जब तक सांस है तब तक आस है। तो जब तक श्वास चल रही है, आगे पहुंचने का, राजयोगी बन जाने का, ऊंचे देवताई जीवन को प्राप्त कर लेने की आस है। मुरली सुनना छोड़ दिया तो फिर ऊंच पद पाने की आस भी छोड़नी पड़ेगी। तो मुरली कभी भी मिस ना हो। और कितनी बार सुननी चाहिए? आपको पता है दादी जी, दादी जानकी जी 8 बार मुरली सुना करती थी, पढ़ा करती थी लेकर के। लेकिन चलिए हम लोग दुनिया में रहते, घर गृहस्थ में रहते, लेकिन एक बार सुनना, एक बार सुनाना, एक बार लिखना, एक एक बार एक बार सुनना, जैसे सुबह सुबह मुरली में सुना हमने एक बार, तो एक बार सुन लिया, एक बार सुना ना, पूरी मुरली नहीं सुना सकते, कोई बात नहीं, मुरली अपने पास रहनी चाहिए, एक पैराग्राफ दो पैराग्राफ मुरली की आप सुनाइए, किसी ने किसी को दिन भर में एक टारगेट, कम से कम एक बार मुरली किसी को सुनानी, सुनना सुनाना, और तीसरा लिखना। ये क्यों कहा गया है? कुछ बातें हैं, जैसे हम लोग कॉलेज वगैरह में पढ़ाते हैं, तो हमने एक अध्ययन करके ये पाया है, कोई साइंटिस्ट ने अध्ययन करके पाया है, क्या पाया है कि जब स्टूडेंट लिखता है, जब स्टूडेंट अपने दोस्त को समझाता है उस बात को, और जब सुनता है, सुनने से 30% बात 40% बात ज्यादा से ज्यादा उसको समझ में आती है, उससे ज्यादा नहीं समझ में आती। 100 बात कही है तो 40 समझ में अंदर जाएगी, लिखेगा तो 20 और समझ में आएंगी, किसी और को सुनाया तो और 20 समझ में आएंगी। यदि हम चाहते हैं कि मुरली का अधिकतम पार्ट हमारे अंदर जाए, तो जरूरी है कि एक बार सुनना, एक बार सुनाना, और एक बार लिखना। भले पूरा नहीं लिख रहे आप, चार लाइनें, वरदान, स्लोगन, मीठे बच्चे, क्वेश्चन आंसर, इतना ही लिख रहे हो काफी है। और ऊपर ही ऊपर कॉर्नर में एक फोटोग्राफ लगा हुआ है, एक मस्ती से, एक वो क्या कह रहा है, एक छोटा बच्चा देख रहे हो, क्या कह रहा है, इट्स फॉर मी। विदेशियों के लिए बातचीत चल रही होती है तो हम क्या सोचे, अच्छा ये तो बाबा ने विदेशियों को कहा है, ये तो दादियों के साथ बातचीत है। लेकिन मुरली का एक एक शब्द भगवान ने अवतरित होकर हमारे लिए उतारा है, ये बात अंदर तक निश्चय कर लो अपने आप में, ये हमारे लिए है शब्द, किसी और के लिए नहीं, हमारे लिए, इट्स फॉर मी। नेक्स्ट प्लीज। उसके बाद तीसरी बड़ी धारणा ब्राह्मण जीवन की, पहली थी अमृत वेला, दूसरी थी मुरली, और तीसरी बड़ी धारणा ब्राह्मण जीवन की पवित्रता। और इसी धारणा के लिए कहा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये वो नियम है जीवन का जिसके लिए हम प्राणों को न्योछावर करने को तैयार हैं, पर अपने जीवन की पवित्रता को, जीवन की इस महान मर्यादा को कभी टूटने और छूटने नहीं देंगे। कौन कौन सी पवित्रता? इसी के लिए एक और कहावत है, चढ़े तो चाखे प्रेम रस वैकुंठ रस, और गिरे तो चकनाचूर। आप देख रहे हो, गिरे तो चकनाचूर, और ऊपर चढ़े तो वैकुंठ रस, परम धाम, सुखधाम, शांति धाम पहुंच गए, और गिरे तो फिर माया की नगरी में रह गए। नेक्स्ट प्लीज। अंग्रेजी में कहावत है, मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। धन गया, कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया, थोड़ा गया, चरित्र गया, सब कुछ चला गया, चरित्र गया, सब कुछ चला गया। चरित्र किसके लिए शब्द कहा गया है? जीवन की पवित्रता के लिए। संसार में राजयोगी जीवन की सबसे बड़ी मर्यादा है अमृत वेला, मुरली और पवित्रता, तीसरी बड़ी मर्यादा। नेक्स्ट प्लीज। एक बार महाभारत का जब युद्ध खत्म हुआ, उस युद्ध खत्म होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, लॉर्ड कृष्णा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, तभी एक पत्रकार नीचे से निकला, पीछे से आया और लॉर्ड कृष्णा से एक सवाल पूछा कि आपको तो संसार भगवान मानता है, आप तो सारी शक्तियों के स्वामी हैं, सारी शक्तियों के मालिक हैं, आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, फिर भी एक साधारण से इंसान के आगे आपने अपने शस्त्र कैसे उठा दिए? पता है लॉर्ड कृष्णा ने क्या जवाब दिया होगा? संसार के सबसे बड़ी प्रतिज्ञा पवित्रता की प्रतिज्ञा है, उस पवित्रता की प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए एक पवित्र आत्मा ने कसम खाई थी कि मैं आपसे शस्त्र उठवा के रहूंगा, एक पावन आत्मा ने कसम खाई थी कि मैं आपसे शस्त्र, किसने खाई थी कसम? भीष्म पिता, मैंने कसम खाई थी कि मैं आपसे शस्त्र उठवा कर रहूंगा, और पावन आत्माओं को सदा भगवान नमन करते हैं। अपनी पवित्रता, अपनी प्रतिज्ञा टूटे तो टूटे, लेकिन अपने पावन आत्माओं की प्रतिज्ञा को कभी टूटने नहीं देते। देखिए ये भी वास्तव में ईश्वरीय इतनी बड़ी मर्यादा है, भगवान अपनी प्रतिज्ञाओं को तोड़कर भी, इसीलिए तो कहा गया है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन धरती पर आ जा रहे। नेक्स्ट प्लीज। इवनिंग योग, नुमा शाम का योग, ये ब्राह्मण जीवन की चौथी बड़ी मर्यादा है। तीन मर्यादा पूरी हुई, ये चौथी बड़ी मर्यादा है शाम का योग। शाम का योग का टाइमिंग क्या है? 6:30 से 7:30। सभी को करना चाहिए। किसी कारण से कभी मिस करते हैं या आपका ऑफिस टाइम या आपका इस तरह से है वर्किंग आवर्स कि आप शाम का टाइम नहीं कर सकते, तो भी कम से कम कोशिश करके 15 मिनट तो जरूर 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 करना चाहिए। आपका बिल्कुल ही ऑफिस आवर्स ऐसा है कि 6:30 से 7:30 तक आप फ्री नहीं हो सकते, तो इस 15 मिनट को फिर आप इवनिंग के अंदर या कभी मैनेज कीजिए। लेकिन यदि आपके ऑफिस आवर्स आपको अलाउ करते हैं तो 6:30 से 7:30 का योग ब्राह्मण जीवन की, राजयोगी जीवन की चौथी बड़ी मर्यादा है। ये मर्यादा कहती है कि 6:30 से 7:30 का समय संसार की उन आत्माओं के लिए है जो प्रभु को प्राप्त नहीं कर सके, जो दुखी हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, जो कहीं मारे गए हैं, मतलब जो हर तरीके से अपने जीवन की आस को छोड़ चुके हैं। जाइए और जाकर अपने मंदिरों में बैठ जाइए। क्या कर सकते हो 6:30 से 7:30 के टाइम? मंदिर की मूर्तियां आपको पुकार रही हैं और आपके सामने ऐसा विजुलाइज करें कि हजारों लाखों भक्त आपके मंदिरों में आपसे मांग रहे हैं। तो हम अपने भक्तों की इच्छाओं को यदि हमने आज पूरा किया होगा तभी तो भक्त कभी मांगेंगे। तो हम अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करें, लोगों के दुखों और आंसुओं को पूछें, फरिश्ता बनकर सारी दुनिया को सकाश दें। आपने मान लो न्यूज़पेपर अखबार में कुछ न कुछ पढ़ा होगा कि आज फलाने जगह 500 लोग मारे गए, वहां 1000 लोग मारे गए, यहां लोग दुखी हैं, यहां ये हैं। उन सभी लोगों को धीरज, सकाश, आथत हम बदलेंगे, जग बदलेगा कहते हैं, सारे संसार को बदलेंगे हम ये कहते हैं, लेकिन ये कहना पूरा कब होगा? जब हम उन आत्माओं के लिए कुछ न कुछ सकाश देंगे। नेक्स्ट प्लीज। ये हमने बात की प्रकृति के 5 तत्वों को भी हमें ही पावन बनाना है, सकाश देना है। नेक्स्ट प्लीज। इसके बाद कुछ समय पूर्व की मुरली में, लगभग 7-8 साल पुरानी मुरली में बाबा ने एक बार कहा था, आपको पता है स्वदर्शन चक्र किसे कहते हैं? रूहानी ड्रिल भी कहते हैं, स्वदर्शन चक्र भी कहते हैं, कुछ लोग इसे सुदर्शन चक्र भी कहते हैं, कुछ लोग इसे साइकिल ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन भी कहते हैं, कई नामों से गिनाना गया। लेकिन है क्या ये? ये स्वदर्शन चक्र वो चक्र है जिससे हम आने वाली किसी भी मायावी परिस्थितियों का गला काट सकते हैं। सबके पास होना चाहिए। कितने लोग हैं जिन्हें स्वदर्शन चक्र फिराना आता है? हाथ खड़ा करेंगे? वेरी गुड, अच्छा नंबर है। लगभग 50% लोग हैं यहां पर ऐसे जिनको स्वदर्शन चक्र फिराना आता है। ये वो स्वदर्शन चक्र है जिसको 5 घंटे में भी फिराया जा सकता है, और ये स्वदर्शन चक्र है जिसे 5 मिनट में भी फिराया जा सकता है। बाबा ने शुरू में कहा था 15 मिनट में स्वदर्शन चक्र फिराओ, बाद में कहा अच्छा समय नहीं है बच्चों के पास, कोई बात नहीं 10 मिनट में, कोई बात नहीं 5 मिनट में, लास्ट में बाबा ने कहा 3 मिनट में फिराओ, फिर लास्ट में एक बार कहा अच्छा कोई बात नहीं उतना भी नहीं है, बाबा के बच्चे VVIP महान है, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये बात सच भी है। तो आप 1 मिनट में एक स्वदर्शन चक्र फिराओ, तो अभी 1 मिनट में एक स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, 1-2 मिनट में, 3 मिनट में, छोटा सा, चलिए 3 मिनट रेड लाइट करेंगे, उसके बाद हम 3 मिनट के अंदर 2 से 3 मिनट में एक स्वदर्शन चक्र फिराते हैं। आप लोग इस स्वदर्शन चक्र की प्रैक्टिस अपने घर में डेली कम से कम 2 बार ये स्वदर्शन चक्र आपको फिराना है, रेड लाइट करेंगे।
प्रभु का ध्यान कीजिए।
ट्रैफिक कंट्रोल ये भी एक ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। बताइए ये जो ट्रैफिक कंट्रोल अभी अभी चला गीत, कौन से नंबर का ट्रैफिक कंट्रोल है और एक दिन में टोटल कितने ट्रैफिक कंट्रोल होते हैं? कोई भी हाथ खड़ा करके बताएंगे? 8। और कोई आंसर? एनीबडी एल्स कोई और बताना चाहेंगे? 5 ट्रैफिक कंट्रोल, 8 ट्रैफिक कंट्रोल, और कोई? 12 भी होते हैं, कितने? 7, 10। चलिए आंसर आया, देखो 5, 7, 8, 10, 12 और 20। लेकिन राइट आंसर इज 9। टोटल 9 ट्रैफिक कंट्रोल होते हैं और ये जो 9:30 बजे अभी अभी चला है ट्रैफिक कंट्रोल, ये नवा ट्रैफिक कंट्रोल है। पहला ट्रैफिक कंट्रोल सुबह सुबह कितने बजे होता है? 3:30 बजे पहला गीत बजता है, 4 बजे दूसरा गीत बजता है, 4:45 बजे तीसरा गीत बजता है, 5:45, 6:45 बजे तीसरा गीत बजता है। पहला 3:30 बजे, दूसरा 4 बजे, तीसरा 5:45 बजे, चौथा 7 बजे, फिर 10:30 बजे, 10:30 के बाद 12 बजे, 12 के बाद शाम को 5:30 बजे, शाम को 5:30 के बाद 7:30 बजे और ये आखिरी 9:30 बजे। टोटल कितने ट्रैफिक कंट्रोल हुए? 9 ट्रैफिक कंट्रोल, 9 गीत बजते हैं उसके अंदर। कम से कम हर ब्राह्मण को 5 ट्रैफिक कंट्रोल मिनिमम करने चाहिए, 9 के 9 ही करने चाहिए। लेकिन ठीक है, आप कामों में इधर उधर उलझे हैं, बीजी ध्यान नहीं रहा, गीत नहीं चला, कोई बात नहीं, लेकिन 5 ट्रैफिक कंट्रोल कोशिश करके हर ब्राह्मण आत्मा को जरूर करने चाहिए। हम बात कर रहे थे, वापस इससे पहले आते हैं 5 स्वरूपों की ड्रिल, जिसे स्वदर्शन चक्र भी कहते हैं। जब भी कोई बुराई है इसका गला काटने में आसानी रहती है, तो करते हैं हम 1 मिनट के अंदर जल्दी से। ओम शांति, रेड लाइट कर देंगे, रेड लाइट, ओम शांति। भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान चमकता सितारा, मैं आत्मा अति सूक्ष्म बिंदी, इस शरीर से बाहर निकलकर चांद सितारों की दुनिया के पार, परे ते परे परम धाम में लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया में जहां चारों ओर गहरी शांति है, मैं
आदि में मैं आत्मा देवता रूप में जन्म लेती हूं। भगवान की बनाई बहुत शानदार दुनिया, धन संपत्ति और प्रकृति के सभी वैभवों से भरपूर इस गोल्डन एज में राज घराने में जन्म लेती, 2500 वर्षों तक हर सुख सुविधा से भरपूर, उड़ने के लिए पुष्पक विमान, सोने चांदी के महल, शानदार प्रकृति, 16 कलाओं के द्वारा अध्ययन, द्वापर युग आया तो हम आत्माओं ने सबसे पहले भगवान शिव के मंदिर बनाए, हम ही लोगों ने शास्त्र लिखे और कलयुग अंत में आते आते हमारी मूर्तियों ने पूज्य स्वरूप में सारे संसार की गिरावट को थाम के रखा। जब कलयुग अंत में दुख बहुत बढ़ गया, हमने पुकारा, छोड़ भी रे आकाश सिंहासन, हे ईश्वर अब धरा पर आओ, गीता में दिए हुए अपने वचनों को पूरा करने के लिए स्वयं भगवान एक वृद्ध तन का आधार ले ब्रह्मा के माध्यम से सारे संसार में हम आत्माओं को ढूंढ ढूंढ कर निकाला, माया के चंगुल से मुक्त किया, हम बने संगम युगी ब्राह्मण और पवित्र बनो और राजयोगी बनो के वरदान से हम बने ब्राह्मण से फरिश्ता।
ये इस तरह हम स्वदर्शन चक्र 5000 सालों का चक्र 2-3 मिनट में भी पूरा कर सकते हैं, ये 2-3 मिनट में शायद पूरा हुआ होगा। इसका अभ्यास कम से कम, वैसे बाबा ने एक बार कहा था 8 बार पूरे दिन में करना है, लेकिन जो 8 बार कर सकते हो उसे विशेष अनुभव होगा। 1 महीना भी करके देखिए संकल्प, 8 बार यदि ये स्वदर्शन चक्र फिरा लिया आपका मन बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, छोटी मोटी बातों से कभी घबराएगा नहीं, हर बात आसान लगने लगेगी। लेकिन ये भी मुश्किल लगे तो केवल 2 बार तो जरूर जरूर दिन में करना। नेक्स्ट प्लीज। ऐसा आपने देखा होगा कई जगह अपने पोस्टर्स में, पोस्टर्स भी मिलता है, ट्रैफिक कंट्रोल की बात हम पहले कर ली, आपको पता है। नेक्स्ट ट्रैफिक कंट्रोल देखिए, आप एक्सीडेंट का देख रहे हो, यदि ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होता है तो क्या होता है दुनिया में, एक्सीडेंट होता है। हमारे मन में विचारों में एक्सीडेंट होता है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, दिन भर का टाइम है और माया बिल्कुल साइड में से देख रही है। ऐसे समय में ट्रैफिक का कंट्रोल, जो मन में आने वाले विचारों का कंट्रोल जरूरी है। तो 9 बार हैं, 9 में से 5 बार करना है। नेक्स्ट प्लीज। कुछ डिवाइन प्रैक्टिसेस हैं, डिवाइन प्रैक्टिसेस मतलब देवीय धारणाएं हैं, छोटी छोटी धारणाएं, जैसे छोटी छोटी धारणाएं, पहला बाबा ने कहा कर्ज क्या होता है, मर्ज, क्या होता है कर्ज, ना उधार लेना ना उधार लेन देन थोड़ी करते हैं बाबा के बच्चे, उधार लेना देना क्यों नहीं करते हैं, हम जिसको उधार देते हैं ब्याज पे यदि किसी को पैसा दिया है तो उसको कितना, वो किस परिस्थिति में होता है वो आत्मा जो ब्याज पे पैसा लेता है, वो कठिन परिस्थितियों में होता है, बहुत दुखी स्टेज में होता है। उस व्यक्ति से यदि हमने कमाई की होगी तो क्या वो कमाई कभी हमें सुख देगी, नहीं दे सकती। बाबा के बच्चे न ब्याज लेना न ब्याज देना, क्रेडिट कार्ड जेब में रखना नहीं, कोशिश करना बहुत, मतलब आपके ऑफिशियल जरूरत नहीं हो तो उसको कभी नहीं रखना, डेबिट कार्ड भले रखे, क्रेडिट कार्ड कभी उधार पैसा नहीं लेना, ना बैंक से उधार लेना, किसी से भी उधार लेने की जरूरत बाबा के बच्चों को नहीं है। और दिन भर का जो हमारा समय है, सबसे मुस्कुरा के बात करना, सबको भरपूर सहयोग देना। दो कलाएं हैं, एक सहयोग देना और एक सहयोग लेना। सहयोग लेना भी एक कला है और सहयोग लेना भी चाहिए। यदि हमारे अंदर बहुत ज्यादा ईगो होता है, अहम होता है, तो हम दूसरे का सहयोग मांग नहीं पाते। सहयोग लेना भी अच्छी आदत है और सहयोग देना भी अच्छी आदत है। यदि हम सहयोग देंगे और लेंगे, हमारी वॉइस मीठी होगी, लोग आपके मित्र बनेंगे, दिन भर आएंगे, अच्छा इनके पास चले, ये कोई ना कोई रास्ता बताएंगे। इसलिए सबको सहयोग देना, सहयोग लेना, मीठी वाणी, कम बोलो, धीरे बोलो। इसके अलावा सबका सहयोग करना, और एक और है हार्ड टाइम और हार्डली एनी टाइम। इसका क्या मतलब है? हम कई लोगों से बात करेंगे तो ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत समय एक्स्ट्रा है, क्या करें आजकल, आप पूछें कैसे हो, बस ये टाइम पास कर रहे हैं। किसी से मिलते हैं, पूछते हैं क्या कर रहे हो, बस चल रहा है, गाड़ी चल रही है। इसका क्या मतलब है? हमारे पास टाइम इतना सारा है, हम उसको कैसे पास करें। कुछ दूसरे टाइप के लोग होंगे, उनको पूछोगे, अच्छा जी आपका क्या, अरे बस बिजी रहता हूं, टाइम ही नहीं मिलता, मरने की भी फुर्सत नहीं है, जहर खाने का भी टाइम नहीं है। तो दो तरह के, एक के पास टाइम इतना कम कि जहर की पुड़िया खाने में कितना टाइम लगता है, वो भी नहीं है, और दूसरे टाइम इतना ज्यादा कि टाइम कैसे पास करे, बस काट रहे हैं दिन। बाबा के बच्चे राजयोगी, इनके पास न वेस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम है, ना अपने काम छूट जाएं, भागते दौड़ते रहे दिन भर सुबह से शाम तक, दो मिनट प्यार से बाबा को बाबा भी नहीं कह सके, ऐसा भी नहीं। क्योंकि राजयोगी जीवन बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल सिखाता है, हमारा आध्यात्मिक जीवन बैलेंस्ड होना चाहिए। और रात को सोते समय एक प्रैक्टिस है, बाबा को सब कुछ सुना के आज का वहीं खत्म, किसी से दो बात हुई हो, किसी से कुछ भी हुआ हो, लेकिन बाबा को सुना दो प्यार से। दुनिया में किसी को सुनाया तो वो एक से चार जगह फैलेगा, लेकिन बाबा को सुनाया, बाबा सागर है, दुनिया में हजारों नदियां आके सागर में मिलती हैं, लेकिन सागर उस कचरे को अपने अंदर नहीं रखता, उसको समा के नीचे बैठा देता है, खत्म हो जाता है। नेक्स्ट प्लीज। कुछ डिवाइन प्रैक्टिसेस और देखें। हमारा चेहरा चीयरफुल रहना चाहिए, लटका हुआ नहीं रहना चाहिए। राजयोगियों का चेहरा कैसे? खिला हुआ चेहरा, मुस्कुराते हुए मिलना, आपकी आधी बीमारियां आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी सिर्फ एक बात से, जिससे भी मिलना मुस्कुराते हुए मिलना, स्माइलिंग लाइफस्टाइल। और विन विन सिचुएशन, कभी कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे मुझे फायदा हो अगले को नुकसान हो। कैसा काम करना? मुझे भी फायदा हो और अगले को भी। इसको कहते हैं विन विन सिचुएशन। आप भी जीतो, मैं भी जीते। दुनिया में गेम चलता है तो क्या होता है, एक जीत दूसरा हार, लेकिन हमारे ऐसा नहीं। राजयोगियों का जीवन कैसा? विन विन, हमारी भी जीत आपकी भी जीत। और कोऑपरेट ईच अदर, कोऑपरेटिंग बिहेवियर। किसी ने सहयोग मांगा, हमने सहयोग दिया, सहयोग लिया भी, बात की हमने इसके बारे में। नेक्स्ट प्लीज। खाने के लिए हैबिट्स, खाने की हैबिट्स में कितने, तीन बार दिन में खाना खाते हैं। खाना खाने खाते समय बाबा को याद करके साइलेंस में खाना खाएं। इस खाने का भी बहुत प्रभाव जीवन पे पड़ता है, ये भी ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। शांत अवस्था में ईश्वर को याद करते हुए भोजन करें। दूसरा, पवित्र भोजन करें। घर के बाहर शादियों में कर सकते हैं? अरे नहीं, वो तो मेरे अपने ही किसी रिश्तेदार की थी ना, अब हम दुनिया में लोगों के लिए नहीं जाएंगे तो फिर लोग हमारे शादियों में कैसे आएंगे, ऐसा थॉट तो नहीं रहता? यदि ये थॉट है तो खत्म कर दें और बंद कर दें इस थॉट को। आप इस बात की चिंता नहीं करें दुनिया वाले आपके पास आएंगे या ना आएंगे, हट्टी एक ही है, बाबा के बच्चों के पास नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे। इस बात की कभी परवाह नहीं करना कि लोग हमारे यहां आएंगे नहीं तो क्या होगा, जरूर आएंगे। संबंध कभी नहीं बिगड़ते। आपके पवित्र भोजन से, आपके श्रेष्ठ भोजन से क्या संबंध बिगड़ जाएंगे? क्या हमारी और उनकी दोस्ती सिर्फ इतनी सी थी? और यदि इतनी सी थी तो ओम शांति। यदि इतने से भोजन की बात पे हमारे संबंध बिगड़ने लगे तो क्या आपके वो पक्के दोस्त रहे? क्या वो सच्चे मित्र, सच्चे सगे संबंधी रहे? कभी भी इतनी सी बातों से दोस्ती बिगड़ती नहीं है, बल्कि और ही अच्छी बन जाएगी। इसलिए हमें कभी भी बाहर का लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना? तामसिक पदार्थ नहीं भोजन में स्वीकार करने, ये ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। और शांति में, जैसे बाबा का फोटो भी कई जगह देखा होगा, बाबा ऐसा लग रहा कि बहुत शांति में भगवान को याद करते हुए भोजन कर रहे हैं। नेक्स्ट पीस, सोल कॉन्शियस। दिन भर का जो हमारा टाइमिंग है, उस टाइमिंग के अंदर हम सोल कॉन्शियस अवस्था में रहें। अब पूरा दिन तो नहीं रह सकते क्योंकि आप रेगुलरली काम कर रहे हैं, लेकिन सोल कॉन्शियस अवस्था में कोशिश करके, मान लो एक करके देखना, एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं। किसी व्यक्ति से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, वो सामने से आए, आप इधर से जा रहे हैं, आप लेफ्ट में चले गए, वो राइट में चले गए, एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते, मान लो ऐसा है। आप बोलोगे नहीं, हमारा तो ऐसा किसी के साथ नहीं है, लेकिन हकीकत बात मानो, हर व्यक्ति का किसी एक से ऐसा हिसाब किताब जरूर होता है, चाहे एक ही से हो। यदि ऐसा हिसाब किताब है, वो हिसाब किताब खत्म करने का तरीका ये है। पहला, जब भी देखो उसको, उसकी तरफ देखो, नजरें हटाने की जरूरत नहीं है, देखो। कैसा देखो? मैं आत्मा उस आत्मा भाई को देख रहा हूं। दूसरा चीज, मुस्कुरा के देखो और ये उम्मीद करो कि सामने वाला भी मुस्कुरा रहा है। गुड मॉर्निंग अपनी तरफ से पहले बोल दीजिए, नमस्ते पहले तरफ से अपनी तरफ से बोल दीजिए, आपको जवाब मिलेगा। टूटे हुए रिश्ते, बिगड़े हुए रिश्ते वापस बन जाएंगे। सोल कॉन्शियसनेस का दूसरा तरीका क्या है? हम जो दिन भर काम कर रहे हैं, कम से कम 20 आत्माओं का लेक्चर को, पीछे भी एक सेकंड किसी को आत्मा देखने में कितना टाइम लगा? मैंने आपको देखा, आपको देखा, अच्छा हाँ आत्मा, मैं आत्मा। दिन में 20 बार भी यदि हम दूसरे को, एक दूसरे को आत्मा देखना शुरू करते हैं तो हमारी आत्मिक स्थिति धीरे धीरे बढ़ने लगती है। सोल कॉन्शियसनेस स्टेज। नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे, एक व्यक्ति है जिसके पास चाबी है, वो कहीं भी अटक जाए, वो व्यक्ति उस चाबी का इस्तेमाल करता है और अपने जीवन के सारे दरवाजे उसके खुल जाते हैं। क्या नाम है उस चाबी का? मेरा बाबा। हम सबके पास भगवान ने वो एक चाबी दी है, मेरा बाबा। कहीं भी अटक जाओ, मेरा बाबा। और क्या जवाब आता है? मेरे बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। आपने कहा मेरा बाबा, उधर से जवाब आता है चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं बैठा हूं। नेक्स्ट प्लीज। ये है डेली चार्ट, पोता मेल। डेली चार्ट रात को सोने से पहले हर ब्राह्मण आत्मा को देना चाहिए, ये भी एक नियम है, मर्यादा है। अब डेली चार्ट में क्या लिखें और कैसे लिखें, सबको मुश्किल से लगता है। तो ऐसा सप्ताह का एक चार्ट आप बना सकते हो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 7 दिन हो गए। और इधर की तरफ 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, वो 5 पॉइंट आप जो चाहे अपने मन से रख सकते हो। भाई उसमें अमृत वेला रख लिया आपने, एक्सरसाइज रख लिया, मुरली रख लिया, ट्रैफिक कंट्रोल रख लिया, पवित्रता रख लिया, कोई भी 5 पॉइंट आप रख लीजिए, आपकी इच्छा है। आप उसको टिक और क्रॉस कर सकते हो उस जगह पर, या फिर 012 नंबर भी दे सकते हो। 0 मतलब नहीं किया, 2 मतलब अच्छे से फॉलो किया, और 1 मतलब थोड़ा थोड़ा फॉलो किया। तो 5, यदि 012, एक क्वेश्चन के 2 नंबर, तो 5 क्वेश्चन के कितने नंबर हो गए टोटल? 5 × 2 = 10। तो रोज 10 नंबर में से आप अपने आप को नंबर दे रहे हो। 10 में से भी आपको 8 नंबर आ गए तो 80% हो गया, 7 आ गए तो 70%, 9 आए तो 90%। यदि लगातार किसी पॉइंट में 7 दिन तक 2-2, 2-2, 2-2 नंबर आ जाएं, तो इसका मतलब वो पॉइंट आपका पक्का हो गया। उस पॉइंट को छोड़ के अगली बार आप दूसरा पॉइंट डाल सकते हो, अगले सप्ताह पॉइंट बदल, क्योंकि हमेशा एक ही एक पॉइंट का चार्ट लिखोगे तो क्या होगा, थोड़ी बोरियत होने लगेगी। अच्छा लिखा था ना, अब रोज रोज क्या चार्ट लिखना। अपने चार्ट में हर 7 दिन में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करते जाएं और खुद अपने आप को नंबर दें। याद रखिए धर्मराज जिस दिन एक इवेल्युएट करेगा तो पूछेगा अच्छा आपने भी तो अपना इवेल्यूशन किया होगा, जरा अपना चार्ट देख करके बताएं हम आपको कितने नंबर दें। तो ऐसा तब कर पाएंगे जब हमने डेली चार्ट भरा होगा। ब्राह्मण जीवन की बहुत बड़ी मर्यादा है चार्ट को लिखना। एक बार में बहुत शॉर्ट में जल्दी जल्दी सुबह से वापस चले, पहली मर्यादा कौन सी थी? अमृत वेला ब्राह्मण जीवन की पहली मर्यादा, मुरली सुनना दूसरी मर्यादा, अमृत वेला हुआ मुरली हुई, पवित्रता तीसरी मर्यादा, पवित्रता के बाद भोजन पवित्र भोजन चौथी मर्यादा, ट्रैफिक कंट्रोल नुमा शाम का योग डेली चार्ट, ये मुख्य मुख्य मर्यादाएं हैं। जिन्होंने भी इस मर्यादाओं का पालन किया वो योगी से महायोगी और महायोगी से राजयोगी बन गया, सतयुग में ऊंची स्टेज को पाएंगे। 9:52 टाइम हुआ है, हमें 9:55 तक का टाइम मिला, आखिरी 3 मिनट हैं, कोई क्वेश्चन हो तो हम डिस्कस करेंगे। एनी क्वेश्चन प्लीज, कोई एक या दो कोई क्वेश्चन होंगे तो किसी के क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं। हाथ खड़ा करके कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे तो, और फिर 3 मिनट योग करके क्लास समाप्त करेंगे। कोई भी एनी प्लीज। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, इस प्रश्न के बाद हम क्लास समाप्त करेंगे। व्हाट डू वी मीन बाय कर्म योग? जिस गीता में कर्म योग का उल्लेख किया गया है वो कर्म योग क्या है? कर्म योग मतलब काम हत कार दे दिल यार दे, ये भी कर्म योग है। दूसरा, केवल हम अपने आप को आत्मा समझ के या बिंदी समझ के काम कर लिया वो भी कर्म योग है। आत्मा बिंदी समझा, सामने वाले को आत्मा समझा, ये भी कर्म योग है। ये सब कर्म योग है। खुद को आत्मा समझा, सामने वाले को आत्मा समझा, मतलब दोनों में से एक भी, ऐसा नहीं कि दोनों टाइम, एक टाइम खुद को आत्मा समझा वो भी कर्म योग है, दूसरे वाले को आत्मा समझ के काम कर रहे हो वो भी कर्म योग है। हथ कार दे दिल यार दे, दिल में मुरली की बात चल रही हो, यार दे मतलब यार की बातों में दिल हो, दिलदार की बातों में दिल हो, तो यार की बात और दिलदार की बात कौन है? कौन दिलदार है? हमने किसे दिल दिया है? बाबा की बातें, और बाबा की बातें क्या है? मुरली। तो आज की मुरली का कोई पॉइंट दिमाग में घूम रहा हो वो भी कर्म योग है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, यही कर्म योग। ओम शांति। 5 मिनट एक गीत बजेगा योग करके, फिर हम लोग चलेंगे।